आज हमारा हिंदी उर्दू पॉडकास्ट प्रीचिंग का दूसरा सेशन है जिसमें हम मत्ती रसूल की अंजील के बारे में सीख रहे हैं। आज मेरे साथ मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब उसकी 18 से 25 आयत तक हम गौर करेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। इसमें यूं लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था, वो पूरा हो के देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदावंद हमारे साथ है। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यस्सु रखा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये मत्ती रसूल के मुताबिक अंजीले मुकद्दस खुदावंद का जिंदा कलाम है, जो हमारे खुदावंद यस्सु नासरी की पैदाइश का हकीकी वाकया बयान करता है। ये वाकया मत्ती रसूल ने पाक रूह के मुकाशफा के वसीला से चर्च के लिए, कलिसिया के लिए कलमबंद किया कि हम जाने के यस्सु मसीह की पैदाइश किस तरह से हुई। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम दुआ करेंगे। खुदावंत हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी इस मोहब्बत के लिए जो तूने अपने लोगों से, अपने चर्च से, अपनी कलिसिया से की, कि उनकी खातिर अपना तख्त छोड़कर जमीन पर आया ताकि हम जिंदगी पाएं। हमें तौफीक अता कर ए खुदावंत कि हम इसकी हकीकी अहमियत को समझें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि तेरा नाम हमेशा पाक माना जाए। हम ये सब मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंत यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, हर बार जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो तकरीबन हमेशा हमारी तवज्जा यीशु मसीह की पैदाइश के हवाला से लूका की अंजील पर होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमें, यानी लूका की अंजील हमें यीशु नासरी की पैदाइश के बारे में दीगर तमाम अनाजील के मुकाबले में बहुत ज्यादा मालूमात देती है। जैसा कि लूका रसूल हमें जिब्राइल फरिश्ते का मुकद्दसा मरियम को यस्सु की खुशखबरी देने का वाकया तफसील से बताता है, ये हमें चरवाहों का यस्सु को जलाल देने का वाकया बयान करता है, और ये हमें जकरिया का बच्चे की पैदाइश का गीत सुनाता है। लूका रसूल के मुताबिक बयान किए गए तमाम हकीकी और तफसीली वाकयात हमारी तवज्जो और दिलचस्पी का मरकज है। पर आज हम मत्ती रसूल के मुताबिक यस्सु मसीह के हकीकी वाकया के बारे में जानेंगे। ये बात याद रखिएगा कि मत्ती रसूल ने मुकद्दस यूसुफ के नुक्ता नजर से यस्सु मसीह की पैदाइश के वाकया को कलमबंद किया, जबकि लूका रसूल ने मुकद्दस मरियम के नुक्ता नजर से यस्सु मसीह की पैदाइश के वाकया को कलमबंद किया। लूका रसूल हमें इस बात की तस्दीक भी करवाता है कि जो कुछ उसने अपनी अंजील में लिखा वो पाक रूह के मुकाशफा और गवाहों की आंखों देखी रुदाद, यानी उनकी आंखों देखी गवाहियां हैं। और पाक कैथोलिक कलीसिया, याद रखिएगा कि जब मैं पाक कैथोलिक कलीसिया का नाम लेता हूं तो इसका हरगिज मतलब आज की रोमन कैथोलिक कलीसिया नहीं है, बल्कि कैथोलिक का मतलब आलमगीर कलीसिया है, यानी वो आलमगीर कलीसिया जो रसूलों ने जिनकी बुनियाद रखी यस्सु मसीह की बताई गई तालीम के मुताबिक, और ये वो आलमगीर मसीही कलीसिया है जिसकी बुनियाद खुदावंद यस्सु मसीह के रसूलों ने, जैसा मैंने कहा कि उसकी तालीम पर रखी, और इसकी बुनियाद 590 साल तक कायम रही। और 590 साल में जब रोमी हुकूमत ने चर्च पर अपना इख्तियार जताया, और ना सिर्फ मसीही कैथोलिक कलीसिया जिसकी बुनियाद यस्सु मसीह की तालीमात पर थी, उस चर्च में से, उस कलीसिया में से मसीही तालीमात को निकाला, बल्कि अपनी इंसानी बनाई हुई रसूमात को मसीही अकीदे में शामिल किया, जिसका बाइबल और मसीहत की तालीम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इन सब झूठी तालीमात और इंसानी रवायात के नतीजे में मसीही कैथोलिक आलमगीर कलीसिया को रोमन कैथोलिक कलीसिया में तब्दील कर दिया गया, जिसका मकसद रोम को खराज तहसीन और जलाल देना और खुदावंत के लोगों को मसीही बाइबल की तालीमात से दूर करना था। और यही वो बुनियादी वजूहात में से एक है जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च की तारीख में आम इंसानों को बाइबल पढ़ने की इजाजत ना दी जाती थी। लिहाजा कैथोलिक चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत बड़ा फर्क है। चनाचा यहां मैं जिस चर्च की बात कर रहा हूं वो रोमन कैथोलिक चर्च हरगिज नहीं है, बल्कि मसीही कैथोलिक यानी मसीही आलमगीर चर्च कलीसिया जिसकी बुनियाद रसूलों की तालीमात पर रखी गई थी, उसकी बात कर रहा हूं कि उनसे रवायत है और उनकी रवायात हमें बताती हैं कि लुका रसूल को ये मौका भी मिला कि वो मकदसा मरियम का खुद इंटरव्यू करे और तमाम वाकयात को, यानी यसु मसीह की पैदाइश के तमाम वाकया को तफसील से कलम बंद करें। यही वजह है कि लुका रसूल की अंजील में दीगर अनाजील के मुकाबले में यसु मसीह की पैदाइश के वाकया को ज्यादा तफसील के साथ लिखा गया है। बेशक जब मत्ती रसूल ने अपनी अंजील लिखी तो उस वक्त उसके पास ये मौका, जैसे लुका रसूल के पास मौका था कि मकदसा मरियम का इंटरव्यू करे, मत्ती रसूल के पास ये मौका नहीं था कि वो मकदसा मकदस यूसुफ का इंटरव्यू करता। अब हम मत्ती रसूल के मुताबिक यसु मसीह के वाक्या को आयत 18 से देखते हैं कि यूं लिखा है कि अब यसु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। गौर करिएगा कि यहां जो लफज यस्सु की पैदाइश को बयान करता है वो लफज पैदाइश यानी जेनेसिस है। हमने पिछले मैसेज में यस्सु मसीह के नसब नामे के बारे में बड़ा तफसीली जाना, और यहां जो लफज पैदाइश यूनानी जुबान का लफज जेनेसिस से अखज किया गया है, जिसका मतलब है बनना या होना। और यहां मत्ती रसूल हमें जो बता रहा है वो ये है कि यस्सु की पैदाइश इस तरह से हुई, यानी ये वो वाकया है जो बताता है कि किस तरह खुदावंत पाक यहोवा जो रूह है इंसानी जिस्म यस्सु मसीह में मुजस्सम हुआ और इस दुनिया में अपने लोगों की नजात के लिए आ गया। यहां मत्ती रसूल जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है वो ख्याली या अफसानवी जुबान नहीं है, बल्कि एक तारीखी जुबान है जो यस्सु नासरी की पैदाइश का हकीकी वाकया गवाहों की आंखों देखी हकीकत से वाजिया बयान करता है। ना कोई ख्याली या अफसानवी कहानी है और ना ही कोई ऐसी बनी बनाई कहानी है कि कोई बंदा खुद बनाई कहानी को बयान करे, बल्कि रसूल कहता है कि अब यस्सु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूल कुद्दत से हामला पाई गई। और ये वाकया मकदसा मरियम की मकदस यूसुफ के साथ मंगनी के बाद और शादी से पहले पेश आया। मकदसा मरियम के किसी भी तरह के जिस्मानी ताल्लुक किसी भी किस्म के किसी भी इंसान के साथ हरगिज कभी भी ना थे, और मकदसा मरियम खुदा की बंदी और कंवारी औरत थी। अब हम अपने ही कल्चर में अगर देखें तो हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे लोगों की मंगनी हो जाती है लेकिन मंगनी शादी तक नहीं पहुंचती, और बहुत सारी वजूहात की वजह से वो टूट जाती है। अब इस की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि जो जिस रिश्ते की बुनियाद मंगनी में निभाई गई आगे वो शादी तक क्यों नहीं पहुंची। लेकिन एक बात यहाँ जो यहूदी कल्चर के मुताबिक बहुत खास है और मैं समझता हूं कि यही वजह है कि मकदस मत्ती और लूका रसूल हमें मरियम और यूसुफ की मंगनी की तफसीलात बताते हैं अपनी अनाजील में, कि इसकी वजह यह है कि यहूदी कल्चर में मंगनी का तल्लक हमारे कल्चर में मंगनी के रिश्ते से काफी मजबूत समझा जाता है और बहुत मुख्तलिफ भी है। ये एक ऐसा मजबूत तल्लक समझा जाता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मंगनी को शादी से 1 साल पहले कायम किया जाता है, जो इस वक्त के यहूदी दस्तूर के मुताबिक होता था। यहूदियों के नजदीक मंगनी टूटने का तसव्वुर तकरीबन ऐसा ही माना जाता है कि जैसा शादी के रिश्ते का टूटना। ये एक बहुत संगीन गुनाह समझा जाता है कि अगर एक कंवारी लड़की जिसकी मंगनी हुई हो और उसके मंगेतर को ये पता चल जाए कि वो हामला है, और इसकी माफी सिर्फ इसमें होती है कि ऐसी औरत को संसार कर दिया जाए। तो कलाम मुकद्दस हमें यह भी बताता है कि इससे पहले कि मरियम की शादी यूसुफ से होती, वो पाक रूह की कुदरत से हामला पाई गई। और मुकद्दसा मरियम के हामला होने में ना तो इसकी अपनी मर्जी शामिल थी और ना ही किसी इंसान के साथ इसके जिस्मानी ताल्लुकात थे जिसके नतीजे में वो हामला पाई गई, बल्कि ये खुदा बाप यहोवा की कुदरत थी कि इसने जिसमें इंसानियत इख्तियार करने के लिए एक पाक कंवारी को चुना जो किसी इंसान के साथ किसी तरह के जिस्मानी तल्लक में कभी भी मुब्तला ना थी। बेशक ये इंसानी अकल से बिल्कुल बाहर है कि एक बच्चे की पैदाइश बगैर जिस्मानी बाप के हो, और यही सवाल मकदसा मरियम ने इंसान होते हुए फरिश्ता से किया जब वो लूका पहले बाप उसकी 34 आयत में कहती है कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। वो कहती है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैं तो मेरा किसी मर्द के साथ जिस्मानी कोई ताल्लुक ही नहीं, तो मैं किस तरह हामला हो सकती हूं। जिस पर फरिश्ता ने जवाब दिया कि इंसान के लिए ये नामुमकिन है, लेकिन खुदावंद जिंदा पाक खुदावंद यहोवा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये वाक्या हमें तखलीक की याद भी दिलाता है कि जब खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया तो बाइबल में यूं लिखा है कि खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। और आगे यूं लिखा है कि खुदा का रूप पानी की सतह पर जुंबश करता था, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। बेशक तखलीक की इब्तदा से पहले खुदा का रूह मौजूद था, और तखलीक में यही रूह पानी की सतह पर जुंबश करता था, और जब कुछ ना था तो अपनी कुदरत में अपने कलाम के जरिए, यानी अपने कलमा के लिए जरिए, अपने अल्फाज के जरिए इसने सब कुछ तख्लीक किया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बाइबल मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक जिंदगी की पैदाइश कादर मुतलक जिंदा खुदावंत पाक यहोवा की तरफ से है, ना कि किसी और मबूद की तरफ से। और जो फरिश्ता मरियम से कह रहा है वो यही था कि ये जिंदा रूह खुदावंत पाक यहोवा, जिसने बगैर किसी चीज से तखलीक को पैदा किया, वही वो रूह खुदावंत पाक यहोवा है जिसने तारीख में बगैर किसी चीज से रोशनी को पैदा किया, आज इस दुनिया की तारीखी को मिटाने के लिए बगैर किसी जिस्मानी बाप के रोशनी को, यानी अपने बेटे हमारे खुदावंत यीशु मसीह को पैदा करेगा। यही रूह खुदा के वसीला से तुम हामला होगी और बेटा पैदा करोगी, और इस कादर मुतलक जिंदा खुदा को किसी इंसानी बाप की जरूरत नहीं कि इस पैदाइश को मुमकिन बनाए। फरिश्ता मरियम को यही याद दिला रहा था कि खुदावंद के लिए क्या मुश्किल है। क्या इस खुदावंद के लिए मुश्किल है जिसने आसमान और जमीन को बगैर किसी चीज की मदद से बनाया? अगर इसने ये तय किया कि वो जिस्म इंसानियत में मुजस्सम हो और एक कंवारी औरत से पैदा हो, तो क्या इसके लिए ये सब करना नामुमकिन है? क्या उस खुदा के लिए जिसने अपने मुंह से अल्फाज निकाला और दुनिया की तखलीक वजूद में आ गई, उस खुदा के लिए ये नामुमकिन है कि वो अपने मुंह का अल्फाज निकाले और तुम हामला हो जाओ? मरियम जो एक खाकसार खुदा की बंदी थी बहुत खूबसूरत जवाब देती है। अगरचा वो कहती है कि अगरचा मैं इस मामले को अपनी जिस्मानी इंसानी महदूद हिकमत में मुकम्मल नहीं समझ सकती, पर मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक खुदावंद की मर्जी पूरी हो। मरियम बखूबी जानती थी कि वो कंवारी है और यहूदी दस्तूर और शरीयत के मुताबिक अगर कोई लड़की शादी से पहले हामला हो जाए तो संसार कर दी जाती है, मगर वो किसी इंसान के खौफ से ज्यादा खुदावंद पाक खुदा जिंदा यहोवा के मंसूबे और कॉल की ताबिया रहते हुए ये कहती है कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो। ये वाकया मरियम के मजबूत ईमान और वफादारी की गवाही देता है और बेशक वो बाकी तमाम ईमानदारों की तरह हमेशा ईमान के वसीला से ही मुबारक कहलाएगी। यीशु मसीह की पैदाइश का यह वाकया बेहद जरूरी है, यहां तक कि जब हम कलीसिया की मीटिंग में रसूलों का कीदा पढ़ते हैं तो हम ये अल्फाज सुनते हैं कि मैं ईमान रखता हूं खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा और कवारी मरियम से पैदा हुआ। ये दोनों अमाल यानी यीशु का रूल कुद्दस के वसीला से पेट में पड़ना और कंवारी मरियम से पैदा होना मसीही चर्च के ईमान का बुनियादी सतून है, जिसे पूरी दुनिया की साइंस और फलसफा भी छुटला नहीं सकता, क्योंकि सच के आगे झूठ और अफसाने और कहानियां कभी कायम नहीं रह सकती। चनाचा जब यूसुफ को मालूम होता है कि मरियम हामला है तो यूसुफ जो एक नेक खाकसार और ईमानदार इंसान था नहीं चाहता था कि मरियम की बदनामी हो और रसवाई की वजह बने। चनाचा वो चुपके से फैसला करता है कि मरियम को खामोशी से छोड़ दे ताकि ऐसा ना हो कि अगर वो इस बात को यहूदियों की शरी अदालत में लाए और वो मरियम को शरीयत के मुताबिक संसार कर दे। मगर हम देखते हैं कि जब वो इस मामले की कश्मकश में ही था कि खुदावंद का फरिश्ता उसके ख्वाब में आता है और कहता है ए यूसुफ, गौर करिएगा कि फरिश्ता किस तरह यूसुफ को मुखातिब करता है। वो कहता है कि यूसुफ इब्ने दाऊद। अब नए अहदनामा में बार बार यह बयान किया गया है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद है, यानी वो दाऊद की नस्ल से है, जैसा कि हमने अपने पिछले मैसेज में भी देखा था। और ये कैसी हैरत अंगेज बात है कि यहां यूसुफ को भी इसी लकब से मुखातिब किया जा रहा है कि ए यूसुफ इब्ने दाऊद। अब यहूदी दस्तूर के मुताबिक ये बात मानी जाती है और जरूरी समझी जाती है कि अगर यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से था तो यहूदी कानून और शरीयत के मुताबिक इसका बाप भी दाऊद के खानदान से हो। अगरचा यूसुफ कागजी तौर पर यीशु मसीह का बाप था लेकिन हकीकी तौर पर उसका सुतेला बाप था। और जैसे हम देखते हैं कि तब फरिश्ता यूसुफ से कहता है कि अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि इसके पेट में है वो रूल कुद्दस की कुदरत से है। दूसरी बार खुदावंद का पाक कलाम हमें मुखातिब करता है कि यीशु मसीह की पैदाइश मरियम का हामला होना किसी इंसानी अमल का नहीं बल्कि खुदा पाक रूह के अमल का नतीजा था। आगे फरिश्ता कहता है कि इसके बेटा होगा और तू इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मैं यहां बाइबल मुकद्दस का और कलीसियाई तारीख का एक छोटा सा स्टूडेंट होते हुए अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि यहूदी रवायात और सकाफत के बारे में बताऊं कि यहूदी रवायात और सकाफत के मुताबिक माँ बाप को यह इख्तियार दिया जाता है कि अपने बच्चों को नाम दे, और ये वही इख्तियार है जो खुदावंद ने आदम को बख्शा था कि तमाम जानदारों को अपनी मर्जी से नाम दे। जैसे साइंस की जुबान में हम अक्सर इस टर्मिनोलॉजी को टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी चीजों को जानदारों को उनका नाम देना, जो कि आदम की भी ड्यूटी खुदावंद की तरफ से मुकरर की गई थी, जिसमें किसी इंसान को नाम देने का मतलब इस पर अपना इख्तियार जाहिर करना होता है। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि जब खुदावंद खुद किसी बच्चे को खास मकसद और काम के लिए पैदा करता है तो इसके माँ बाप को इख्तियार नहीं देता कि उसे नाम दे, बल्कि खुद इस बच्चे को नाम देता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये बच्चा खुदा के लिए इसका मखसूस और मसा करदा है। इसकी मिसाल हम यीशु मसीह में देखते हैं। उसके बाद यीशु मसीह के जो कज़न ब्रदर थे जिनका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसका नाम भी खुदावन की तरफ से ही मुकर्रर किया गया। और यही वाकया हम जकरिया के साथ भी देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश होती है तो खुदावंद खुद जकरिया को ये हुक्म बख्शता है कि तुम उसका नाम अपने नाम पर जकरिया ना रखना बल्कि उसका नाम यूहन्ना रखना। और ये वही कुछ है जो कुछ यूसुफ के साथ अभी हो रहा है। इससे पहले कि यूसुफ के साथ होता, जकरिया के साथ सेम यही वाकया हो चुका था। और खुदावंद यूसुफ से कहता है कि तू इस बच्चे का नाम यस्सु रखना क्योंकि वो मेरा बेटा होगा और दुनिया की निजात के लिए पैदा होगा। और इस नाम यस्सु का थियोलॉजिकली एटमोलॉजी में मतलब है यहोवा बचाने वाला या यहोवा निजात देने वाला। इसलिए फरिश्ता ने कहा कि इसका नाम यस्सु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। क्या ही खूबसूरत और बामायनी नाम है। यानी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक निजात का मतलब किसी आने वाली आफत या मुसीबत से रहाई का है। और सबसे संगीन और बदतरीन आफत या मुसीबत खुदावंत की अदालत का दिन है, यानी वो दिन जिस रोज खुदावंत आसमान का सीना चीर कर दोबारा अपनी कलीसिया के लिए आएगा। और अपनी कलीसिया के लिए वो क्या ही खुश नोदी और खुशी का मौका होगा, लेकिन उन तमाम के लिए जो यस्सु को कबूल नहीं करते, जिन्होंने यस्सु मसीह के नाम को जानते हुए भी कि वो जिंदा खुदा है उसका इनकार किया है, उस रोज उनके लिए वो बड़ी आफत का दिन होगा। और ये वो आफत होगी जो इस दुनिया के हर इंसान पर जो यस्सु मसीह को अपना निजात दहिंदा नहीं समझता उस पर आएगी, क्योंकि वो निजात दहिंदा यस्सु मसीह जो है वो पूरी दुनिया की अदालत करेगा। और इसी मकसद के लिए इस दुनिया में वो आया, इसी मकसद के लिए अपने लोगों के लिए उसने जान दी, इसी मकसद के लिए वो आसमान पर उठाया गया और दोबारा फिर लोगों की अदालत करने के लिए आएगा। अब ये सब कुछ हुआ कि कलाम का वो कौल पूरा हो जिसमें कहा गया है कि एक कंवारी हामला होगी और बेटे को जन्म देगी और वो इसका नाम इमैनुअल रखेंगे जिसका मतलब है खुदावंद हमारे साथ है। ये कलामे मुकद्दस का वो हवाला है जो 19वीं सदी के उलमा के लिए तनकीद का मरकज रहा है, जहां मत्ती रसूल कहता है कि यस्सु की पैदाइश यसाया 7 बाब के मुताबिक नबूवत को पूरा करते हुए बयान करती है कि एक कंवारी हामला होगी और बेटे को जन्म देगी। जबकि तनकीदी उलमा कहते हैं कि यहूदी जुबान में दो अल्फाज हैं जो लफज कंवारी के लिए इस्तेमाल हुए हैं और जिनका चुनाव यसाया ने किया है वो दुरुस्त और तकनीकी लफज नहीं बल्कि एक आम लफज है जिसका मतलब है कंवारी लड़की, यानी वो लड़की जिसके कंवारेपन का होना तसव्वुर किया जाता है लेकिन लाजमी नहीं समझा जाता। मजीद तनकीदी उलमा कहते हैं कि यसाया किसी कंवारी लड़की के बारे में नबूवत नहीं करता बल्कि सिर्फ एक जवान लड़की के बारे में बयान करता है कि वो हामला होगी, इसीलिए बाइबल कंवारी लड़की के हामला होने के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ एक जवान लड़की के हामला होने के बारे में बताती है जिसे मुकद्दसा मरियम कहते हैं। ये वो मकाम है जहां बाइबल की दुरुस्त तशरीह की तालीम का होना बहुत जरूरी है ताकि बाइबल मुकद्दस के सच को सही और हकीकी महफूम में बयान किया जाए। और एक्सपोजिटरी प्रीचिंग की इस शाख का हिस्सा जिसमें बाइबल की असली जुबानों यानी वो जुबानें जिनमें बाइबल मुकद्दस लिखी गई है उनको जानते और समझते हुए इसके सियाको सबाक को मद्देनजर रखते हुए इसकी दुरुस्त तशरीह की जाए और ऐसे बयान की जाए जैसे ये लिखी गई है, यानी बगैर इसमें किसी चीज को शामिल किए और बगैर इसमें से किसी चीज को निकाले ऐसे ही पेश करना बाइबल को जैसे बाइबल लिखी गई है। और बेशक कलाम के इस हिस्से के गहरे मुतालिया और सियाको सबाक से ये बात वाजिया तौर पर साबित होती है कि मुकद्दस मत्ती और लुका रसूल ना सिर्फ ये बयान करते हैं कि यस्सु एक जवान कंवारी लड़की से पैदा हुआ बल्कि एक ऐसी पाक तामन लड़की से पैदा हुआ जिसका कभी किसी आदमी के साथ किसी तरह का जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। दूसरी तरफ तनकीदी उलमा ये भी कहते हैं कि देखो यसाया कहता है कि बेटा पैदा होगा और इसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, और यहां नए अहदनामे में फरिश्ता कहता है कि इसका नाम यस्सु रखना, चनाचा ये दोनों एक नाम नहीं है, इसलिए ये एक ही शख्सियत के बारे में नबूवत भी नहीं है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि यसाया हमें ये बात नहीं बताता कि इसका नाम इमैनुएल क्यों रखा जाएगा। यहां नाम इमैनुएल पाक खुदावंद यहोवा के यस्सु मसीह यानी बेटे में मुजस्सम होने को जाहिर करते हैं, क्योंकि वो वादा जो खुदावंद पाक यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और यकूब से किया था कि मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरे लोग, खुदा अपना वादा इमैनुएल जाहिर करते हुए, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है, यानी अहद का खुदा, वादों का सच्चा खुदा, वो खुदा जो वादा करकर मुकरता नहीं, उसके मुताबिक अपने लोगों में यस्सु मसीह की शक्ल में मुजस्सम होता है, जिसका यहूदी नाम यस्सु है, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए उनके गुनाहों से उनको छुड़ाने के लिए आया, और उसका नबूवती नाम इमैनुएल है, यानी वो यस्सु मसीह जो खुदा के वादा को जाहिर करता है कि खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में मौजूद है, वो इनको नहीं भूला और वो अपने लोगों को कभी भी नहीं भूलता, और ये वही वादा है जो खुदावंद यस्सु मसीह नासरी अपने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने लोगों को याद दिलाते हुए कहते हैं कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्या ही खूब खुदावंद के बंदे सेंट ऑगस्टन ने खुदावंद यस्सु मसीह की पैदाइश के बारे में लिखा है। वो अपनी किताब में यूं लिखते हैं कि वो जिसके जरिए वक्त बना, खुद वक्त के अंदर पैदा हुआ, यानी वो यस्सु मसीह के बारे में ये बात कहते हैं, वो जो दुनिया से पहले हमेशा से मौजूद था, दुनिया में अपने बहुत से बंदों से उम्र में छोटा बना, वो जिसने इंसान को पैदा किया खुद इंसान बना, उसे एक मां ने जन्म दिया जिसे उसने खुद वजूद बख्शा, वो उन हाथों में उठाया गया जो इसने खुद बनाए थे, इसने उन छातियों से दूध पिया जिन्हें इसने खुद भरा था, वो चरनी में बच्चे की तरह रोया, वो कलमा जिसके बगैर इंसान बोल भी नहीं सकता। आमीन। आज हमारा हिंदी उर्दू पॉडकास्ट प्रीचिंग का दूसरा सेशन है, जिसमें हम मत्ती रसूल की अंजील के बारे में सीख रहे हैं। आज मेरे साथ मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब उसकी 18 से 25 आयत तक हम गौर करेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। इसमें यूं लिखा